ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। इस श्रुति के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की सर्वगतता, सर्वव्यापकता, अखंडता, नित्यानंदता, अविच्छिन्नता, श्रुति व्यक्त करती है और साधक के लिए ये परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में अभिव्यक्ति, ये ज्ञान है। इसी ज्ञान को साधक को प्राप्त करना चाहिए। जो मुमुक्षु है इसी ज्ञान से ही वह मुक्त हो सकता है। श्रुति ने जो कहा है कि एकमेव द्वितीयं ब्रह्म न्य नानास्ति किंचन, जो अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म है, उसका बोध प्राप्त करना वही सत्य है और वही तुम्हें सर्व बंधन से मुक्त कर सकता है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति का साधन भी है, क्योंकि ये मुक्त ज्ञान है। ये स्वरूप ज्ञान है, परंतु जो रूप में, रूप के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए रूप का निषेध करके स्वरूप को जानना है। ये जानना बाहर नहीं है, बाहर से नहीं है, बाहर का भी नहीं है। ये जानना अपना ही है, अपने में ही है और आप ही है। ये श्रुति के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। इसको बाहर जानने के लिए बाहर भागने की नहीं है, बाहर देखना बाहर होता है, परंतु जान करके यदि आप देखते हो तो तुम्हारा देखना सफल होता है, सार्थक होता है, आनंददायी होता है। और बिना जाने देखते हैं तो वो देखना निरर्थक है, निष्फल है और दुखदायी है। परिश्रम ही निर्माण होगा, दुख ही निर्माण होगा। इसलिए पहले श्रुति ज्ञान की बात करती है कि पहले परमात्मा को जानो, फिर परमात्मा को देखो। क्या? पहले परमात्मा को जानो कि परमात्मा क्या है। मंदिर में परमात्मा को देखते 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 हजारों साल हमारे बीत गए, कई जन्म निकल गए, परंतु हमें मिला कुछ नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने परमात्मा को पहले जाना नहीं और हमने देखना चालू कर दिया और देखने को ही हम सत्य मान बैठे। यही तुम्हारे दुख का कारण है। देखना झूठा नहीं है। क्या? देखना झूठा नहीं है, करना झूठा नहीं है, जानना झूठा नहीं है, बोलना झूठा नहीं है, मानना झूठा नहीं है। झूठा तब है जब ज्ञान नहीं है। क्या? श्रुति झूठ असत शब्द का प्रयोग नहीं करती है, मिथ्या शब्द का प्रयोग करती है। क्या? मिथ्या का अर्थ वास्तविक झूठ नहीं होता है, असत नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। ज्ञान रहित जो देखना है, ज्ञान रहित जो जानना है, ज्ञान रहित जो मानना है या ज्ञान रहित जो सुनना है, वो मिथ्या है। क्या मिथ्या? क्या है वो? मिथ्या है अर्थात वो तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता है। देखो राजा परीक्षित ने भी भागवत सुना है ना, और राजा परीक्षित के साथ साथ अनेक ऋषि मुनियों ने भी भागवत सुना, अनेक मंत्रियों ने भी भागवत सुना होगा, राजा परीक्षित के परिवार ने भी सुना होगा, गांव के अनेक प्रजा ने भी सुना होगा। सुना सबने है, परंतु मुक्त कौन हो गया? मुक्त केवल एक हो गया, एक कौन हो गया? केवल एक परीक्षित हुआ। ना कोई ऋषि मुनियों का वहां नाम आता है मुक्ति के विषय में मुक्त हो गए, और ना उनके परिवार का, ना कोई मंत्रियों का, ना कोई प्रजा का। क्यों? सुना तो सबने है। क्या सुना? अन्य लोगों ने किसी ने शब्द सुना, किसी ने अर्थ सुना, किसी ने वाणी कैसी बोलती है, कैसी गाती है, कला को सुना है ना, परंतु ज्ञान को सुना? ज्ञान को जिसने सुना वो मुक्त हो गया। ज्ञान को छोड़ करके यदि आप सुनते हैं, देखो एक प्रसंग आ जाता है, कई ऋषि मुनियों ने वेदों को कंठस्थ कर दिया, चारों वेदों को। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के कहने से, क्योंकि सभी देवताओं के गुरु जो है वैसे बृहस्पति है, परंतु बृहस्पति को भी जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी से ही। इसलिए तो वेदों को ब्रह्मा कहा है, ब्रह्म कहा है ब्रह्मा। और उस ज्ञान को प्रदान करने वाले ब्रह्मा है। तो सभी ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ कर दिया, और कंठस्थ करने के बाद फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि गुरुदेव भगवान, हमने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ये वेदों का ज्ञान प्राप्त कर दिया, हमने वेदों को कंठस्थ कर दिया। क्या वेदों को कंठस्थ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है? उन ऋषियों ने कहा कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर दिया क्योंकि हमने वेदों को कंठस्थ कर दिया। वेदों को कंठस्थ कर दिया तो कहा कि हमने जो वेदों को कंठस्थ कर दिया, इसमें कोई गलती हो तो आप हमें फिर सुधारिए, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं, मंत्रों को सुनाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप इतना वेद सुनने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भाई सब प्राणियों के रचयिता, उनको तो उसी में उनका लगा हुआ है, कर्म में लगे हुए हैं। कहा कि भाई अभी मेरे पास तो सुनने का टाइम नहीं है, परंतु ऐसा करो तुम वो पीपल का वृक्ष है और उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, तो आप पीपल भगवान को सुना दो। और उसमें कहा कि भगवान वो पीपल को सुना देंगे, वो तो जड़ है, पीपल क्या सुनेगा, वो तो जड़ है। और हमारी जो जड़ वस्तु हम जो सुनाएंगे इतना परिश्रम करके, उसमें कोई गलती हो गई तो वो क्या बताएगा? कहा कि जाओ तुम बताओ, मेरी जो आज्ञा है तुम पालन करो। कहा कि कैसा बताएगा? कहा कि तुम्हारी ये गलती हो गई तो पीपल का एक पत्ता तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, दो गलती हो गई तो दो पत्ते गिरेंगे। तो उससे समझ लेना तुम कि भाई ये पत्ता गिर गया तुम्हारे सिर पर, तो समझ लेना कि ये गलती हो गई, उसको आप ठीक करो। तो इस प्रकार से बता दिया तो सब जाकर के बैठ गए पीपल के नीचे, परंतु वो वृक्ष को सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? वृक्ष को, भगवान को नहीं सुना रहे थे, क्योंकि उसके अंदर उनकी भगवत बुद्धि थी ही नहीं। ब्रह्मा जी की भगवत बुद्धि थी, इसलिए बता दिया था उन्होंने। तो वहां जैसा ही उन्होंने ऋग्वेद का पहला ही मंत्र का उच्चारण किया, अग्निमिले पुरोहितम, इतना उच्चार करते ही संपूर्ण पीपल के पत्ते गिर गए उनके ऊपर। एक मंत्र बोलते ही सब पत्ते गिर गए। अब वो तो घबरा गई कि ये तो इसका मतलब हम जो बोले पूरा गलत ही है। घबरा करके ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बता दिया कि भगवान ऐसी ऐसी, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हो गई, और ये तो सब पीपल के पत्ते गिर गए, हमारा ये कई मंत्र का हमने उच्चारण किया और सब पीपल के पत्ते गिर गए, अब हम क्या करें? अब तो क्या ये हमारा जो मंत्र है, ये जो हमने उच्चारण किया या ये जो इनको कंठस्थ किया, हमारा ये बेकार का है, व्यर्थ है, निरर्थक है? कहा कि पत्ते गिर गए इसके मतलब निरर्थक है। कहा कि कैसा तुमने सुना है, कैसा बोले बताओ? उन्होंने ओंकार को छोड़ दिया। ओंकार तो मंत्रों की आत्मा है, और ओंकार को छोड़कर के मंत्र का उच्चारण होता है तो वो निष्प्राण जड़ वस्तु है, निरर्थक है। क्या? तो जड़ वस्तु का भार कितना भी सिर पर ढोगे तो भार ही होगा या कुछ होगा? भार के अलावा कुछ होगा नहीं। कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तो तुमने तो हो ज्ञान को छोड़कर के अज्ञान को ही पढ़ रहे हो। तुम परमात्मा को तो छोड़ दिया, ओंकार को तो छोड़ दिया। ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म है, परब्रह्म, उस परमात्मा को छोड़कर के तुम शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, शब्दों को कंठस्थ कर रहे हो, और शब्द को ही तुम ज्ञान मान रहे हो। ये तुम्हारी क्या है? निरर्थकता है। ये शब्दों की सार्थकता बिना परमात्मा के बिना नहीं हो सकती है, ध्यान रखो। क्या? चाहे शब्द हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कुछ भी कर्म हो, कुछ भी धर्म हो। इसलिए श्रुति सबसे पहले ज्ञान का बात करती है। ईश्वर शब्द से उस ईश्वर को लाती है और ईश्वर की व्याप्ति को बताती है। इसका कारण क्या? आगे जो भी तुम करोगे वो तुम्हारा सार्थक हो, तुम्हें उसका फल मिले। हम मंदिर में जाकर परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का नामोच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु एक ज्ञान को छोड़कर। और श्रुतियों ने कहा कि एक को जान लिया तो सब जाना जाता है, एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए परमात्मा का ज्ञान क्या है और कैसा ज्ञान, रूप के दृष्टि से नहीं, गुण के दृष्टि से नहीं, स्वरूप ज्ञान अर्थात परमात्मा का स्वरूप, जिसको श्रुतियों ने ओंकार के माध्यम से स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी और अधिष्ठान भी, ये परमात्मा का संपूर्ण रूप है। संपूर्ण रूप, ये संपूर्ण रूप का अनुभव, संपूर्ण रूप का बोध पहला आवश्यक है। ज्ञान से युक्त होकर यदि तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म ही नहीं बनता है, कर्म होने पर भी कर्म नहीं बनता है। इसलिए तो भगवान ने एक गीता में श्लोक दिया, कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मण्य च कर्म य सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। भगवान ने भी कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, परमात्मा का जन्म भी दिव्य और परमात्मा का कर्म भी और जन्म भी दोनों भी दिव्य हैं, और हमारे दोनों भी मलिन हैं। कर्म मलिन इसलिए जन्म मलिन, जन्म मलिन इसलिए कर्म मलिन। तो उसको दिव्य बनाने का उपाय क्या है? हम जन्म लेते हैं, किसी को पूछा तुमने अपने जन्म को देखा? कहा तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इसका मतलब क्या? अज्ञान में ही जन्मे हैं, अज्ञान से ही जन्मे हैं और अज्ञान का ही जन्म है। अंधकार से क्या प्रकाश की उत्पत्ति होगी क्या? शक्य नहीं। इसी प्रकार से अज्ञान से जन्म, यह अज्ञान ही तो मलिनता है, मलिनता। इसलिए हमारा जन्म भी मलिन और कर्म भी मलिन, और परमात्मा का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। क्यों? ज्ञान का जन्म ज्ञान रूप ही होता है, ज्ञान का कर्म भी ज्ञान रूप ही होता है। भगवान कृष्ण कभी कृष्ण नहीं बने हैं, ब्रह्म ही रहे हैं, ध्यान रखो। क्या? भगवान कृष्ण कभी मनुष्य नहीं बने हैं, मनुष्य दिखे जरूर है, परंतु कभी मनुष्य नहीं बने हैं, वो परब्रह्म ही रहा है। समझे? ब्रह्म से अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं हुए, थोड़े भी च्युत नहीं हुए। ज्ञान की ही अभिव्यक्ति इस शरीर के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं, ज्ञान अभिव्यक्त हो गया है। और वो भी कैसा अभिव्यक्त हुआ? अज्ञान रूप से अभिव्यक्त हुआ नहीं, ज्ञान रूप से ही, लीला रूप से ही अभिव्यक्ति। लीला है, लीला आनंद, लीला आनंद रूप होती, आनंद रूप, और आनंद की आनंद में ही होती, आनंद से ही होती, आनंद की ही होती है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहते हैं कि नहीं कृष्ण को? परंतु हमारा जब जन्म भी मलिन है तो हमारा कर्म दिव्य कैसा बने? इस मलिनता क्या है और मलिनता कैसी मिटे? और उसका साधन केवल एक ज्ञान है। क्या? किसका ज्ञान? परमात्मा को जान तुम जानते हो तो तब जानोगे ना, जब तुम पहले अपने को जानोगे। जो अपने को नहीं जान सकता है वो परमात्मा को कैसा जानेगा? परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना होता है। क्या? परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना पड़ता है, और जो अपने को नहीं जानता है वो परमात्मा को कतई नहीं जान सकता है। परमात्मा को कितना भी सुनाए, सुना परमात्मा को जाता है, देखा परमात्मा को जाता है, माना परमात्मा को जाता है, परंतु जानना आत्मा को होता है। ये ध्यान रखो। क्या? जानना आत्मा को होता है, और आत्मा को किससे जानना होता है? श्रुति वाक्यों से जानना होता है। क्या? जानना किसे होता है? जन्माने वाला साधन क्या है? जन्माने वाला साधन है श्रुति, और उस श्रुति के माध्यम से आपको जो जन्माते हैं उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो श्रुति के द्वारा परमात्मा का ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान ही क्या करता है? तुम्हारे अज्ञान को दूर कर सकता है। परंतु उसमें भी ध्यान रखो, श्रुति भी कितनी भी चिल्लाए, गुरु भी कितने भी बताए, परंतु तुम्हारा कोई पुरुषार्थ ही नहीं तो क्या करोगे? गुरु क्या करते हैं? अमृत को लाते हैं तुम्हारे मुख में डालने तक तो गुरु काम कर सकते हैं, परंतु निगलना तो आखिर तुम्हें पड़ेगा कि नहीं है? निगलोगे ही नहीं तो निगलोगे ही नहीं तो क्या तुम अमृत बन सकते हो, अमर बन सकते हो, मुक्त हो सकते हो, निर्भय हो सकते हो, दुख से रहित हो सकते हो? क्या हो सकते हो? कुछ नहीं हो सकते। ये जीव का पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। जो उस अमृत को, ज्ञानामृत को जो अंदर उतार लेता है, और अंदर उतार करके उसको हजम कर लेता है। क्या? अंदर उतार करके जो हजम कर लेता है, जब हजम हो जाता है तब वो वैसा बनता है। समझेंगे? ऐसा ही नहीं बनेगा। गुरु इतना काम कर सकते हैं, ईश्वर इतना काम कर सकता है, परंतु आत्मकृपा नहीं हो, आत्म पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ नहीं हो तो तुम अपने को नहीं बदल सकते हैं, ध्यान रखो। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ में दो वस्तु होती है, ग्रहण और त्याग। पुरुषार्थ में दो वस्तु होती है, प्रधानता ज्ञान की है और त्याग की गौणता है। पुरुषार्थ में त्याग की गौणता है और पुरुषार्थ की महानता है। पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान को अंदर उतार करके ज्ञान को हजम करना। और त्याग क्या है? ज्ञान के जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधकों को हटाना। क्या? जो ज्ञान के जो प्रतिबंधक है उस ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटाना और ज्ञान को हजम करना। क्योंकि प्रतिबंधक यदि हट गए तब ही ज्ञान हजम होगा, अन्यथा नहीं। ये भी बताता हूं, ज्ञान को तुमने पी लिया, मान लो इसलिए तो कल मैंने बताया था कि दवा तब काम करती है जब पथ्य का पालन करोगे। पथ्य का पालन नहीं करोगे तो दवा कुछ काम नहीं करेगी। दवा कितनी भी लाख की दवा हो, परंतु पथ्य का पालन नहीं करोगे तो दवा निरर्थक हो जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, वो वैद्य को गालियां दोगे, है ना, मेरे को पैसे पैसे मेरा पैसा भी लूटा, टाइम भी मेरा बर्बाद हुआ, और डॉक्टर साहब तुम्हारी दवा ने तो कोई काम ही नहीं किया, बेकार की गई तुम्हारी दवा। अब बताओ, दवा का दोष या वैद्य का दोष या दोष तुम्हारा? हम अपने दोष को नहीं देखते हैं, और दवा पर दोष देते हैं या वैद्य पर दोष देते हैं, ये तुम्हारा कितना सत्य होगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए शास्त्र ये दो बात बताते हैं, और यही श्रुति ने बताई है कि तुम्हें ग्रहण करना है, क्या करना है, कैसा करना है। इसलिए महात्मा लोग बताते हैं कि पहले तुम परमात्मा को देखो, और दिखाने के लिए मंदिर, मंदिर में परमात्मा को देखो, परमात्मा ही है, समझे। जैसे मंदिर में एक पत्थर में तुम परमात्मा को देखते हो तो किससे देखते हो, भाव से देखते हो कि आंखों से देखते हो? हा? देख तो आंख रही है, परंतु आपको जो नतमस्तक कर रहा है, हाथ जुड़वा रहा है, या साष्टांग दंडवत करा रहा है, तो वो कौन करा रहा है? वो तुम्हारा परमात्म भाव, वो परमात्म भाव तुम्हें क्या कर रहा है, हाथ जुड़वा रहा है। कोई कोई हम देखते हैं तो सुबह जाते हैं ना, बाबूनाथ मंदिर ऊपर है, उस शिखर को ही क्या करते हैं, बहुत देर तक नमस्कार करते हैं। भगवान भगवान को देख रहे हैं क्या? हाँ, बाबूलनाथ को तो देख नहीं रहा है, परंतु नमस्कार कर रहा है। देख मंदिर के शिखर को रहा, और शिखर भी नहीं देखता है, उसका ऊपर का जो लाइट है वो लाइट को देख रहा है, क्यों अंधेरे में ही। मैं 5:15 बजे घूमने के लिए निकलता हूं ना, तो उस समय तो ऊपर अंधेरा रहता है, ऊपर जो लाइट है उस लाइट को वो दिख रहा है, मंदिर भी नहीं दिख रहा है और शिखर भी नहीं दिख रहा है, परंतु मंदिर भी मान रहा है, शिखर भी मान रहा है, बाबूलनाथ को भी मान रहा है, और देख उस बत्ती को रहा है, परंतु मान किसको रहा है? तो वो नमस्कार उस बत्ती को होगा कि ही बाबूलनाथ को होगा? देख तो नहीं रहा है, भाव, समझना, क्योंकि भाव ये केवल भाव बदलने के साधन है ये। इसलिए मानना अर्थात बिना माने भाव निर्माण नहीं होता है। इसलिए पहला श्रुति तुम्हें भाव बताती है कि इस संपूर्ण जगत के अंदर इस जगत को परमात्मा ने व्याप लिया है, अर्थात परमात्मा ही इसके अंदर प्रविष्ट है। मंदिर में भी परमात्मा है कि नहीं है, शिखर में भी परमात्मा है कि नहीं है, वो लाइट जो दिखाई दे रहा है उसमें भी परमात्मा है कि नहीं है? नहीं होता, नहीं मानता तो नमस्कार क्यों करता? इसलिए स्थिति कहती है कि पहले सभी प्राणी मात्रों में, जड़ हो चेतन हो, स्थावर हो जंगम हो, सभी में पहला तुम क्या करो, परमात्म भाव निर्माण करो। क्या करो? परमात्म भाव निर्माण करो कि सभी में परमात्मा है। पहले सभी में सप्तमी है, समझ लेना, जगत्याम, इसलिए तो ये सप्तमी का निर्देश कर दिया है। इस सभी के अंदर सत्ता के रूप में परमात्मा है, चेतनता के रूप में, चित्त के रूप में परमात्मा है, प्रियता के रूप में परमात्मा है, आनंद के रूप में परमात्मा है। उसमें परमात्मा के बिना तो वस्तु रहती नहीं, दिखती नहीं, होती नहीं है। सत्ता परमात्मा की ही है, जो दिख रहा है उसकी नहीं है, सत्ता परमात्मा की है। इसलिए श्रुति कहती है कि परमात्मा को पहले मान लो, मैं जो बता रही हूं मेरी बात को तुम सत्य मानो। ये ज्ञान है, कौन सा? परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। श्रुति पहले परमात्मा का परोक्ष ज्ञान कराती है और उस परोक्ष ज्ञान को ही साधक अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस परमात्मा को साक्षात अपरोक्ष कर सकता है। श्रुति के द्वारा, आचार्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान और बहुत हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान, श्रुति परोक्ष ज्ञान करा देती है तो समर्थ आचार्य अपरोक्ष ज्ञान करा सकते हैं, परंतु साक्षात अपरोक्ष ज्ञान जीव को अपने पुरुषार्थ से ही करना होता है। इसलिए श्रुति पहले बता रही है कि मैं जो बता रही है इन सभी में कण कण में परमात्मा है, परमात्मा की व्याप्ति है। इस प्रकार से ये तुम पहले मानो और मान करके परमात्मा भाव आपको निर्माण करना है। ये जानना किसके लिए? देखो, जानना होता है मानने के लिए, और मानना किस लिए होता है? करने के लिए। और करना किस लिए होता है? होने के लिए। मेरी बात समझ में आई? पहले सुना जाता है और सुन करके ये जो आपने सुना, उस सुनने से जो आपको परोक्ष ज्ञान हुआ, उस परोक्ष ज्ञान से मानना होता है और मान करके भाव करना होता है, भाव से भावित होकर के बनना होता है। ये श्रुति साधक के लिए भी बता रही है, ज्ञान भी बता रही है, परमात्मा को भी बता रही है और जीव को भी बता रही है। और पुरुषार्थ में जो प्रतिबंधक है, तेन शब्द बहुत बड़ा गहरा इशारा करता है। उस ज्ञान को जानो, परमात्मा कैसा है। परमात्मा कैसा है तो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, अव्यय है, अविनाशी है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एक ही शब्द के द्वारा श्रुति ने ये परमात्मा का निर्देश कर दिया है और उस निर्देश का पालन करने के लिए उस ज्ञान का आश्रय करना चाहिए। ध्यान रखो, जो भी हम करते हैं, जो भी हम मानते हैं, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम देखते हैं, सभी इस कर्म का आश्रय यदि ज्ञान है, क्या इस कर्म का आश्रय यदि ज्ञान है तो तुम्हारा कर्म सफल होगा। तो कर्म कभी भी दुख निर्माण नहीं कर सकता है, क्या? और उसका संसार कभी दुखमय नहीं हो सकता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अवघात संसार सुखाता करी न आनंद भरी न तिन्नी लोक। मैं इस संपूर्ण संसार को आनंदमय बनाऊंगा, आनंद से परिपूर्ण कर दूंगा। किससे? ये ज्ञान से। तो यही श्रुति भी बता रही है कि पहले परमात्मा को इस प्रकार से जानो। परमात्मा मंदिर में तो है ही, क्योंकि मंदिर भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। परमात्मा के अंतर्गत मंदिर भी आ जाता है। इसलिए मंदिर में भी परमात्मा है, मंदिर भी परमात्मा है। इसलिए ये सभी में परमात्मा को पहले भाव करो। भाव क्या करो, ये भक्ति बताई है, क्योंकि भाव ही भक्ति है, समझ। परंतु ये भाव तब होगा, पहला ज्ञान होगा, फिर ज्ञान में निष्ठा होगी, प्रेम होगा, तब वो मानना सार्थक होगा। नहीं तो मानते तो सभी है, क्या सभी मानते हैं, परंतु ये मानना भी सार्थक नहीं होगा। इस मानने के अंदर भी क्या वस्तु है होना चाहिए, पहले तो ज्ञान होना चाहिए, फिर ज्ञान में निष्ठा होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, और उस निष्ठा में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम से मानो, फिर तुम्हारा मानना सार्थक होगा। और उस मानने में यदि प्रेम नहीं है, उस मानने में यदि निष्ठा नहीं है, उस मानने में यदि ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारा मानना भी निरर्थक है। इसलिए मानने में पहला ज्ञान हो, फिर ज्ञान में बुद्धि आपकी स्थिर हो, और उस स्थिर बुद्धि में प्रेम हो। प्रेम का मतलब क्या होता है जानते हो? प्रेम का मतलब क्या होता है? बहुत सालों से तो आप प्रेम प्रेम सुनते रहे हो, प्रेम उसका नाम है। प्रेम क्या करता है? तुम्हारे अस्तित्व को मिटाता है, और अस्तित्व है तो प्रेम नहीं काम है, ध्यान रखो। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया प्रेम की व्याख्या करते समय। प्रेम संत कुमार तो कहते अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम अनिर्वचनीय है। क्या प्रेम अनिर्वचनीय है? क्योंकि प्रेम का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, प्रेम में कोई कर्म नहीं है, प्रेम में कोई धर्म नहीं है, प्रेम में कोई कुछ भी वस्तु नहीं है। इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। कर्म से प्रेम की सिद्धि नहीं होती है, और ना अन्य किसी साधनों से, अनिर्वचनीय स्वाभाविक है। जैसा परमात्मा अनिर्वचनीय है, तो परमात्मा का प्रेम क्या निर्वचनीय होगा? प्रेम भी अनिर्वचनीय है, परंतु उन अनिर्वचनीय के अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या नारद जी ने की। वो क्या की? ज्ञान भी, परमात्मा भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, और प्रेम भी अनिर्वचनीय है, परंतु तीनों की अनिर्वचनीयता में अंतर है। प्रेम की अनिर्वचनीयता क्या है? प्रेम की अनिर्वचनीयता है काम रहित होना, काम रहित होना पहली अनिर्वचनीयता। काम गया तो तुम्हारा संसार गया। क्या? काम गया क्योंकि काम ही संसार है। काम गया तो संसार गया। वो काम जहां रहता है, काम जिसके आश्रित होता है, उसको भी मिटना चाहिए। वो क्या है? वो तुम्हारा अहम, परिच्छिन्नता। क्या? वो परिच्छिन्नता। जो मैं का जो अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हारा मैं मिटना चाहिए। कहा है कि मैं का मिटत निशान, तू ही रहत जात है मैं का मिटत निशान। ये तुम्हारा मैं पना समाप्त होना और मेरापन समाप्त होना वो अनिर्वचनीयता है। प्रेम की अनिर्वचनीयता क्या है? प्रेम बोला नहीं जाता है, क्योंकि बोलने के लिए जब तक आप नहीं हो मैं नहीं होगा तो तुम बोलोगे, आप नहीं हो मैं नहीं होगा तो करोगे कुछ नहीं। प्रेम भगवान का रूप है, ब्रह्म का रूप है प्रेम। इसलिए तो रसो वैसा श्रुति कहती है कि नहीं, प्रेम रस है, समझना, रस का ही नाम प्रेम है। और ये रस कौन सा रस? अमृत रस, ब्रह्म रस, ज्ञान रस। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्तो भवती मत्तो भवती आनंदो भवती। ये ब्रह्म रूपी रस जब प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है तो तृप्ति होती है। तृप्ति प्रेम हो और फिर काम हो शक्य नहीं है, ध्यान रखो। प्रेम हो और परमात्मा से कुछ मांग भी हो, क्या तो प्रेम है? ध्यान रखो। इसलिए ये अभिमान मत करो कि हम परमात्मा के बहुत प्रेमी हैं। प्रेम बहुत गहन चीज है, समझ। हाँ, प्रेम तो है परंतु उस प्रेम में काम मिला हुआ तो बिगड़ा हुआ प्रेम है, दूषित प्रेम है, दूषित प्रेम। और वो दूषित प्रेम परमात्मा को नहीं दे सकता है, सत्य परमात्मा को नहीं दे सकता है, सत्य परमात्मा का बोध नहीं करा सकता है। भक्ति रेव गरीय से भक्ति रेव इनम गया गमयती, समझना। प्रेम परमात्मा के तरफ ले जाने वाला है, ले जाने वाला नहीं है। प्रेम आ गया तो समझ लो परमात्मा आ गया, जा ही नहीं सकता है परमात्मा। इसलिए भाव में प्रेम होना चाहिए, ध्यान रखो। क्या होना चाहिए? प्रेम होने का मतलब क्या? कामना नहीं होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए, मैपना नहीं होना चाहिए। जानिए आई बात, तब तुम्हारा प्रेम होगा। और वो प्रेम से निकला हुआ जो भाव, वो भाव तुम्हें आनंद देगा। आनंद ध्यान रखो क्या देगा? आनंद देगा। और वो आनंद कौन है? परमात्मा है। इसलिए श्रुति पहले कहती है कि तुम पहले भाव निर्माण करो, और भाव निर्माण करने के लिए शुद्ध प्रेम, और शुद्ध प्रेम के पहले निष्ठा, और निष्ठा के पहले परमात्मा। परमात्मा में निष्ठा हो, पहले परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो। तुम्हारे अंदर कामना है, इसका अर्थ तुम्हारा क्या हो गया? कामना, जिसकी कामना है उस विषय में तुम्हारी निष्ठा है कि परमात्मा में ज्ञान में निष्ठा है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए उस व्यापक तत्व में निष्ठा होना चाहिए। क्या? उस व्यापक तत्व में पहले बुद्धि स्थिर करो, और बुद्धि स्थिर होते ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा मैंपना मिट जाएगा। और मेरापन किसको मेरा कहोगे, किसको मैं कहोगे पहले बताओ, किसको मैं कहोगे? मैं कहने के लिए कुछ रहा है क्या? नहीं। व्यापकता में मैं नहीं होता है, व्यापकता में चाहना नहीं होती है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो चाहोगे किसको? ये प्रेम का लक्षण है। इसी को लेकर के अनिर्वचनीय सनत कुमारों ने प्रेम का लक्षण किया। प्रेम कैसा है तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। और नारद जी ने कहा कि सा कामाय सा न कामाय माना विरोध निरोध रूपत्वात। भक्ति कैसी है? वो प्रेम जिसके अंदर है और वो प्रेम जो कर रहा है, कृति में ला रहा है प्रेम को, उसका नाम भक्ति है। परंतु उस कृति में काम नहीं होना चाहिए, उस प्रेम में चाहना नहीं होना चाहिए और उस प्रेम में मैं नहीं होना चाहिए। वो जो करना है वो करना भक्ति है। आपका देखना भक्ति होगी, आपके सुनना भक्ति होगी, आपका चलना भक्ति होगी, आपका बोलना भक्ति होगी। यद्यत करोमि सकलम शंभो तवाराधनम। हमारा कर्म भी क्या बन जाएगा? हमारा कर्म परमात्मा बन जाएगा, हमारा कर्म आनंद रूप बन जाएगा। तस्तृति इदत केन, इस शब्द से संकेत कर रहे, ध्यान रखो, समझे? ये मंत्र बहुत कूट मंत्र और बड़ा गहन मंत्र है। इस पर तो जितना भी बोलना चाहोगे ना तो महीनों बोल सकते हैं, कितना गहन मंत्र है ये। तेन बुंजी था, इस प्रकार से भाव करके अब छूटा। क्या छूटा? बुंजी था, पहला ये भाव करो परमात्मा का, इस प्रकार से भाव करो, इस परमात्मा को मानो, इस परमात्मा को ऐसा जानो, ऐसा मानो और ऐसा समझो। ये जो समझदारी है, इस समझदारी से जो त्यागना है, त्यागने के लिए भी समझदारी होना जरूरी है। और बिना समझदारी का त्यागोगे तो पछताओगे, रोओगे, क्या होगा? दुख ही होगा। बिना समझे छोड़ दोगे तो वो दुख का ही कारण बन जाएगा, वो त्याग नहीं होगा, वो रोग बन जाएगा। समझना, वो क्या बन जाएगा? रोग बन जाएगा। इसलिए स्तुति कहती है कि त्याग समझदारी से हो, समझदारी होना चाहिए त्याग में। समझदारी क्या है? अरे छूटे, छूट भी जाए और हमें मालूम तक न पड़े, ये समझदारी होना चाहिए। यदि मालूम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? अहंकार निर्माण होगा कि नहीं? है मैंने इतना दे दिया, इसका आप लोग गुप्त दान करते हो कि नहीं? गुप्त दान क्या? लिफाफे में छिपा करके नोट डालते हैं और उसको आप क्या करते हैं? गुप्त दान करते हैं। परंतु क्या वो गुप्त है? गुप्त है क्या वो? दूसरे को न दिखना या न दिखाना, इसका नाम गुप्तता नहीं है। समझिए ना, क्योंकि तुम तो जानती हो, तो गुप्त कैसा? गुप्त तो उसको कहा जाता है कि तुम भी नहीं जानो और दूसरे भी नहीं देखे, केवल एक परमात्मा ही समझे, उसको कहा जाता है गुप्तदान। यहां भक्त, ये जो शब्द त्यक्तेन शब्द जो है बड़ा मार्मिक है, ध्यान रखो। त्याग कैसा हो? त्याग दिखावटी नहीं होना चाहिए, दिखने वाला नहीं होना चाहिए। और जो दिखने वाला होता है वो त्याग नहीं होता है। क्या होता है? वो भोग होता है, भोग। कभी सुखात्मक भी भोग हो सकता है, कभी दुखात्मक भी भोग हो सकता है। समझिए ना, इसलिए कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन परमात्मा निष्ठा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया था, मानना तो बदल सकता है, मानना जो होता है वो मन के अंदर होता है, मानना तो बदल सकता है, परंतु उसके साथ निष्ठा होगी। क्या होगी? उसके साथ ज्ञान होगा, स्थिरता होगी और प्रेम होगा तब तुम्हारा मानना सत्य होगा। निष्ठा शब्द का प्रयोग इसलिए हमने कहा था। तो ऐसा ही निष्ठा परमात्मा में होगी, उस तुम्हारे मानने से क्या छूटेगा, क्या त्याग होगा, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। तुम्हारी अविद्या का त्याग होगा, काम का त्याग होगा, कर्म का त्याग होगा। उस परमात्मा को इस प्रकार से मानो, इस प्रकार से जानो, इस प्रकार से समझो, इससे क्या होगा कि तुम्हारा अविद्या समाप्त होगी, अज्ञानता समाप्त होगी। अज्ञानता समाप्ति का अर्थ होता है तुम्हारा मैंपना समाप्त होगा, तुम मैं नहीं रहोगे। ये मैं मिटना, मैं मिट गया था, अभी जग गई। तुलसी ने भी क्या कहा, मैं और मेरा, यही तो माया है। क्या है? यही माया है, यही भ्रांति है तुम्हें, यही दुख देती है। परमात्मा में ऐसी निष्ठा होगी, ज्ञान में निष्ठा होगी, ऐसा ही प्रेम तुम्हारे अंदर होगा और उसके अनुसार यदि भाव बनेगा तो तुम्हारा मैं का त्याग होगा। इससे इस संकेत तीन शब्द इधर कर रहा है, इस प्रकार से तुम परमात्मा को मानोगे, सर्वव्यापक कण कण में परमात्मा को मानोगे तो तुम्हारा मैं मिट जाएगा, तो अविद्या मिट गई, काम मिट जाएगा, क्योंकि काम बाहर होता है। अब बाहरपना तुम्हारा खत्म होगा, अब बाहरपना खत्म हो गया तो अंदरपना भी समाप्त होगा। आप देश काल से अपरिच्छिन्न हो जाओगे, ये काम भी मिट जाएगा और कर्म भी। फिर कर्म कहां होगा? कर्म भी मिट जाएगा। त्यागना क्या है? अविद्या को त्यागना है, काम को त्यागना है, कर्म को त्यागना है। पहले कर्म का त्याग, फिर काम का त्याग और फिर अविद्या का त्याग। ये तीन त्याग हो, तीनों का त्याग हो जाता है तब भोग होता है। उसको तीन त्याग, तीन भुंजिता शब्द से बता रही है। उस समय उसके बाद जो भोग होगा वो क्या भोग होगा, क्या भोग होगा? अरे अपना अपना होना ही, आनंद आनंद ही होना, अमृतो भवती। क्या होता है? वो अमृत ही होता है। और अमृत ही जब हो जाओगे तो भोग किसका होगा? मृत का होगा। खत्म। क्यों? मैंपना मिट गया तो मृत भोग खत्म हो गया, अविद्या मिट गई, मृत्यु समाप्त हो गई। ध्यान रखो, अविद्या ही मृत्यु है, काम ही मृत्यु है, कर्म ही मृत्यु है। ये जो हम देख रहे नहीं कि ये मर गया वो मर गया, ये कर्म मृत्यु हो रही है। भक्ति वासनाओं को मृत्यु मार देती है, धर्म कर्म को मारता है। तीन साधन जो हमारे शास्त्रों ने बताए, क्या बताए? धर्म कर्म को मारता है और भक्ति काम को मारती है, ज्ञान अविद्या को मारता है। और तुम्हारे मानने में ये तीनों भी है, इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति, अमृत ही हो जाता है, अमृतो भवती, वो अमृत ही हो जाता है, वो अमृत का भोग, वो भोग है। कह रहे हैं कि भुंजी था, अब ये मिल गया। उसके बाद कहते हैं कि मां गृद कस्यस्वित धनम, कस्यस्वित धनम मां गृद। अब ये धन क्या है, किसका धन? इसके अनेक शास्त्रकार, अनेक विद्वान लोग अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। शब्द वही है परंतु व्याख्या अनेक हो जाती है।
साहब ये आज टाइम तो हो गया, इसलिए आज यहीं का ये इस पर फिर कल विचार कर लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।